The following is a lecture on Udo Sandesh, Brahmar Geet, from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 46, verses 25 to 28, on the topic of Nanda and Yashoda's crying in separation of their divine son Sri Krishna. This lecture is given by His Holiness Radha Govind Das Goswami, in Khadia, India, on 26th December 1998 and 1999.
इस बार कृष्ण दोनों हाथ नहीं लगाए थे धनुष तोड़ने में, उठाए ऐसे गन्ना जैसा तोड़ दी. और रक्षक जब दौड़े कृष्ण बलराम को अरेस्ट करने के लिए, मारने के लिए, तो दोनों भाई दोनों टुकड़ा लेकर के ठाए ठाए पीट पाट कर सबको मार. मथुरा के न्यूज पेपर में सवेरे छपा करके लगवा दे. नंद बाबा इस लीला को देखे थे अपनी आंखों से. तालक त्रयम महासार, महासार सार का अर्थ है हीर. सार मतलब शक्ति, बल. सार अयोवत दृढ़, लोहा जैसा वो
दृढ़
होगा. 3.5 लाख मन वजन था, शास्त्रों में लिखा गया है. रामायण जी बता रहे 3.5 लाख मन, इतना बड़ा वजन. और ऐसे विकराल विशाल भारी धनुष को हस्तेना एकेना, एक हाथ से बभंजा तोड़ दिया. कैसे? जैसे इधरात, जैसे हस्तीराज कोई गजेंद्र किसी जस्ती को, छड़ी को, उख को तोड़, ऐसे तोड़ दिए. और वो तो उद्धव, ये तो तुमने सुना होगा या देखा भी होगा मथुरा में, लेकिन मैं तुमको सुना रहा हूं देखी हुई बात, तुम उसको नहीं सुना होगा. सुना तो होगा, देखा नहीं. सप्ताहम अदधात गिरे, एकेना हस्तेना दोनों ओर का समन्वय करते हैं. पहाड़ को 7 दिन 7 रात और एक हाथ से धारण किए रहा. तो ईश्वर नहीं है तो क्या है? ईश्वरताई का प्रत्येक प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन ईश्वर मानेंगे नहीं. सप्ताह हम अदधा एकेना हस्तेना, कभी हाथ भी कम से कम बदला होता कि ये हाथ दुख रहा है तो चलो पहाड़ को इधर कर ले, या 2-4 पग इधर उधर घूम जाए, ऐसा भी नहीं किया. अचल खड़ा रहा और एक ही अंगुली पर 7 दिन पर्वत उठाएगा. यह वास्तव में श्री कृष्ण के ईश्वरताई का प्रतिपादन नहीं है, आवेश में, प्रेम में लीला वर्णन नंद महाराज के द्वारा. सप्ताहम अदधा दिन, पहाड़ धारण कर लिया. गोवर्धन धारणस्यापि क्रमद भंजनादिना सक हिता चरणे न देवार्था एवं परिवसाना की किया. तो यह प्रश्न होगा कि नंद बाबा आप कहते हैं कि देवताओं का कार्य बनाने के लिए कृष्ण बलराम यहां आए थे, देवता आए थे. गोवर्धन धारण करना तो आपका अर्थ था ब्रजवासियों की रक्षा करने, तो इस पर कोई नहीं, नहीं. गोवर्धन धारण के द्वारा शक्र का मद भंजन करके शक्र का हित किए, तो इसलिए ये देवताओं के लिए ही धारण. इस तरह से तेज कर रहे. अब एक बार कह दिए कि देवताओं के लिए लोग आए थे, तो अब सारी बातों को और देवताओं के लिए कि हमारे लिए कुछ नहीं. प्रलंबो धेनु को रिष्ट स्त्रीणावर्तो बकादय दैत्य सुरा सुरजिता हता जेने हलीलया. प्रलंबासुर का वध किया, सब जगह लीलया हत जेना. अब जेना का अर्थ कृष्णेना या बलेना, बलराम जी उन लीला के अनुसार लगा लेना चाहिए. अब दोनों को एक में कहा गया क्योंकि दोनों में भेद नहीं है. प्रलंब को बलराम जी ने मारा, धेनु को भी बलराम जी ने मारा, लेकिन कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है, इसलिए नंद बाबा दोनों को मिलाकर कह रहे हैं. जगह जगह जीना के स्थान पर कृष्णेना या बलेना बैठा लेना. प्रलंबो धेन को अरिष्ट, अरिष्ट को कृष्ण ने मारा था, तृणावर्त को कृष्ण ने मारा था, बकादय बक यादय आदि शब्द केश्यादय आदि शब्द केसी आदि ये समझना चाहिए। अब दैत्य आए सब सुरासुर जी पाए, देवताओं को जीते थे, असुरों को भी जीते थे, इतने बलवान थे, लेकिन इनको लीला पूर्वक खेल खेल में मार दिया। जेना इति अनोन्यम स्नेहन सहाज्य जिना ऐक्याभिप्राय, अथवा असुरों के वध में कृष्ण और बलराम परस्पर एक साथ जुट करके करते थे, सहायता देते थे एक दूसरे की, इसीलिए एक भी करके कहा गया असुरों के वध में। ठीक है, ये प्रश्न होगा कि क्या नंद बाबा कृष्ण बलराम को ईश्वर समझने लगे, कहते हैं मन में, तो क्या उनका स्नेह शिथिल हुआ, कुछ प्रेम कम हुआ भगवान जान करके? नहीं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंद कृष्णानुरक्त भी अत्युत्कंठ भवतु श्रीं प्रेम प्रसर विह्वल। इस प्रकार कृष्णानुरक्त भी, तू कहां गई ईश्वरताई, ऐश्वर्य का स्मरण कहां चला गया, कृष्ण में ही अनुरक्त अनुराग युक्ता बुद्धि रह गई, कृष्णानुरक्त भी का अर्थ बुद्धि और कृष्णानुरक्त का अर्थ कृष्ण से रंगी हुई, कृष्ण के अनुराग में फंसी हुई बुद्धि। नंद महाराज प्रेम की भाषा विचित्र होती है, कहते हैं हम कृष्ण और बलराम को ईश्वर मानते हैं, और हम लोगों के लिए नहीं देवताओं के लिए आए थे, तो फिर भी क्यों कृष्ण अनुरक्त भी अब इतना अनुरक्त क्यों है? कृष्ण अनुरक्ता अनुराग युक्ता भी जस सह स्मृत्यारूढ़ महेश्वर्जनाती, स्मृति में आरूढ़ हुआ महा ऐश्वर्य, फिर भी नंद बाबा सोचते हैं, जैसे चक्रवर्ती का जी कहते हैं हंत हंत हाय हाय, एतादृशता गुण रत्न करेण स्वपुत्रेण दुर्दृष्ट वसात विश्लिष्ट भूमिक, गुणगण मिले गुण के रत्नाकर, इस प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त अपने पुत्र रत्न से दुर्दैव वसात किसी बुरे कर्म के कारण प्रारब्ध के कारण आज मुझे वियुक्त होना पड़ा है। हाँ। ऐश्वर्य का भी स्मरण आया फिर भी पुत्र भाव नहीं गया, ऐसे पुत्र से मैं वियुक्त हुआ हूँ। इस प्रकार इति कृष्ण अनुरक्ता एवं धीर न तो वसुदेववत ऐश्वर्य गंधे नापी शिथिलित स्वभाव स्वसंबंध संकुचिता लागा धीर जैसे। चतुर्थी पाद लिख रहे हैं कि स्वर्ग का स्मरण थोड़ा हुआ उसके कारण भी कृष्ण में और आसक्ति बढ़ी है, ऐसा नहीं वसुदेव जी की तरह ऐश्वर्य का गंध भी आ जाए तो संबंध शिथिल हो। 11 वर्षों के बाद कृष्ण जेल में जाकर के प्रणाम किए वसुदेव जी को और हाथ कड़ी बड़ी खोले, लेकिन वसुदेव जी ये सोच करके आलिंगन नहीं किए कृष्ण का कि ये भगवान है। 11 वर्ष के विरह के बाद जिस बच्चे को वो जेल से बाहर पहुंचाए थे काल पुरुष को नंद बाबा ने बड़ा किया, और वो बच्चा दोनों आकर के प्रणाम कर रहे हैं तो अखबार में नहीं ली है, स्नेह नहीं उमड़ा, लेकिन भय हो गया कि इनको हम कैसे गोद में लेंगे, तो भगवान है तो हमारे पूजा के विषय है, इनकी तो वंदना करनी चाहिए, और अपराध मानने लगे कि कृष्ण बलराम हमारी वंदना कर रहे हैं। तो चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि ये वसुदेव जी नहीं है नंद महाराज, इस ऐश्वर्य का गंध भी आ जाए तो भाव संबंध शिथिल हो जाता है, ये है ब्रजवासी नंद महाराज। ऐश्वर्य का स्मरण आया फिर भी कृष्णानुरक्त भी, कृष्ण में अनुराग युक्त बुद्धि ही रहे, तो कृष्णानुरक्त भी नंद नंद मरा इति इत्थम पूर्वोक्तम माधुर्यम प्रभावमय निज पालनम च, इति का अर्थ इस प्रकार माधुर्य और प्रभाव और अपने पालन संस्मृत्य संस्मृत्य सम्यक मुहु स्मृत्वा विक्षय पौन पुण्यन स्मरणस्य त्यागे शक्ति भाव बोध्य, शक्ति अभाव बोध्य, संस्मृत्य संस्मृत्य संस्मरण करके सम्यक स्मरण करके इसके कौन पुण्य है जो बारंबार बात कही जा रही है दीक्षा, तो इससे स्मरण की धारा वाहिकता धारा वाहिक स्थिति व्यक्त हो रही है, संस्मृते संस्मृते निरंतर कभी रुक नहीं रहा है संस्मरण। और इसके द्वारा यह भी बोध होता है कि उस स्मरण के त्याग में शक्ति अभाव बोध, शक्ति का अभाव, ये भूल नहीं सकते कृष्ण को। दो बार संस्मृत्य संस्मृत्य के द्वारा सीधे, तो संस्मृत्य संस्मृत्य को आप कोटि बार ले जा सकते हैं, तो संस्कृत ग्रामर छूट देता है इस बात की। तो यहां संस्मृत्य संस्मृत्य जैसे जैसे संस्मरण हो रहा है वैसे वैसे वर्णन हो रहा है। उद्धव जी कुछ बात कहकर समझाते हैं तब तक नंद बाबा और कह कहकर रोने लगते, कभी तार टूट नहीं रहा है। भगवान शेषनाग तो अनंत काल अनादि काल से भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और शेष नहीं कर सकते। एक रात क्या है, एक रात कौन बड़ी चीज है कृष्ण की लीलाओं को का वर्णन करने में। और नंद महाराज जो कृष्ण को देखे हैं, खिलाए हैं, पाले हैं, पोसते हैं, उनके सामने कितनी लीला की तरंगे आ रही हैं। इसके लिए उद्धव जी भी सोए नहीं, वे चुप हो जाते थे और सुनने लगते थे, उनको परम सुख मिलता था, आनंद मिलता था। लेकिन फिर भी नंद बाबा की जब दशा देखते थे रोना, तो फिर समझाने लगते थे। तो उद्धव जी का कुछ भी बोलना अरण्य रोदन जैसा है, कोई अरण्य में वन में रोए तो कौन सुनने वाला है दुख दर्द। तो उस तरह से कुछ भी कहते थे नंद बाबा को तो अपनी ही धूल लगे थे, कृष्ण ऐसे बोलता था, ऐसे खाता था, ये करता था। तो दूसरे के घर में चोरी करने लगा तो मैंने जसोदा से कहा कि तुम मक्खन अच्छा नहीं निकाल रही, लड़के की आदत बिगड़ रही है, चोर हो जाएगा तो आज मक्खन चुरा रहा है, कल अलंकार चुराएगा, परसों किसी की औरत चुराना चालू करेगा, ये ठीक नहीं है, तुम इसके लिए माखन निकालो। मैं उस दिन कहा, ये कहा, ऐसे कहा, ऐसे कहा, भाव जिन लीलाओं को सुन करके परमानंद में मग्न होते रहे। कुछ देर के बाद जब नंद बाबा मूर्छित से हो जाते थे, बोली नहीं निकलती थी, तो उद्धव को भ्रम हो जाता था कि अच्छा अब सुनेंगे, तब ये चालू करते थे। लेकिन उसको सुनते नहीं थे नंद बाबा, केवल बारिश बस शिथिल हो जाती तो ये बोलते थे। और ये बोलते थे तब तक बीच में फिर नंद बाबा अपनी लीला चालू करते थे भगवान की। जो कुछ भी हो, उद्धव जी सफल नहीं हुए नंद महाराज के, नंद महाराज के भक्ति का उद्रेक देख करके वे बहुत प्रभावित हुए, बहुत सुखी हुए, लेकिन नंद महाराज को सुखी नहीं कर सके। और जब नंद महाराज को सुखी नहीं कर सके तो अब वो गोपियों को क्या सुखी करेंगे, तो सहज समझा जा सकता है। संस्मृत्य संस्मृत इति संस्मृत्य संस्मृत इति का अर्थ इस प्रकार से, और भी स्मरण करके नंद महाराज तो कृष्ण में और अनुरक्त भी थे, अति उत्कंठा हो रही थी कृष्ण से मिलने की, कृष्ण को देखने की, और उत्कंठा से विह्वल हो गए, परवश हो रहे थे, और इस कारण से वाष्परुद्ध कंठ हो गया। पहले कुछ बोलने की शक्ति भी थी और परम किंचित वक्तु न ससाकल थे, अब उसके बाद कुछ भी बोलने में समर्थ नहीं हो सके। अति उत्कंठ तुष्णी अभूत, चुप हो गए। यशोदा जी सुन रहे थे अपने पुत्र के गुणों के वर्णन। यशोदा वर्णमानानी पुत्रस्य चरितानि च श्रीमन्त श्रुण्य वास्त्राक्षित स्नेहस्मित पयोधरा। और माँ यशोदा पुत्रस्य वर्णमानानी चरितानि च, पुत्र के वर्णित चरित्र को सुन रहे थे। उद्धव जी भी परम उत्तम श्रेणी के कृष्ण कथाकार है, ये भी कुछ वर्णन किए थे, लेकिन अधिकांशतः नंद बाबा के मुख से मां यशोदा पुत्र के गुण का वर्णन सुन रहे थे। तो श्रीमती सुनती जाती थी और अश्रूणी आवाश्राक्षी आंसू बहाती जा रहे, आंसू छूता जा रहा है, अश्रूणी अव अश्राक्षित, असुरक्षित का अर्थ है भारत, अवकाश से समानता। मां यशोदा का वस्त्र माला भी भींग रही थी सब, और स्तनों से दूध चू रहा था स्नेह वात्सल्य में, स्नेह स्मित पयोधरा, स्नेह के कारण माँ यशोदा के दोनों स्तन स्मित हो रहे थे, बह रहा था दूध। अभी इतने वर्षों के बाद कृष्ण के प्रति वही भाव है, वात्सल्य है, यशोदा के आंखों से आंसू और स्तनों से दूध चू रहे थे, स्नेह स्मित पयोधरा, स्नेह है ना स्मित प्रसिद्धीर पयोधर दस्य। स्नेह एक ऐसी वस्तु है, स्तन दूध आ जाता है, जैसे गाय है, गाय दूध देती है, उसका बच्चा आता है, बच्चा उसके थन का स्पर्श करता है तो उसके अंदर स्नेह उमड़ता है बच्चे को दूध दूध, तो कभी कभी किसी किसी गाय के दूध से दूध चूने लगता है, तो स्मित कहते हैं। स्नेह के कारण प्रसृत क्षीरव पयोधरव जस्य तथा भूता सती इति स्नेहा के रिक्त होता, इस प्रकार से अतिशय स्नेह का वर्णन किया गया है। चिर काले अतीते अपि सद्य अस्तने अस्तिनत्वात्, और अश्रुणी अव अस्त्राक्षित, सब तरह से आंसू चू रहे थे, वस्त्र भींग रहा था, शरीर भींग रहे थे आंसू के चल, और माँ में कुछ बोलने की शक्ति नहीं थी। वर्ण मानानी का अर्थ यहाँ भर्तृ कथ्य मानानी, अपने स्वामी नंद महाराज के मुख से कृष्ण की लीलाएं वर्णन की जा रही है। पुत्रस्य चरितानि प्राप्तव्य सुरोत्तम इत्यादि वचनादिना कथन अपि पुत्र भाव अनुपगेन विशेषता च स्नेह वर्धनेन तस्मिन् करुण वात्सल्य में उद्योतयति। जब नंद महाराज यह कह रहे थे कि मैं कृष्ण बलराम को ब्रज में आया हुआ देवोत्तम मान रहा हूँ, विष्णु और शिव मान रहा हूँ, ये सुन करके भी मां यशोदा का पुत्र भाव गया नहीं। विशेषता से और क्या हुआ, स्नेह वर्धने न तस्मिन परम वात्सल्यम निवद्यते, और अधिक वात्सल्य ही बढ़ा। भगवान के ऐश्वर्य का चरित सुन करके ब्रजवासियों में कभी भी स्नेह शिथिल नहीं होता है, ये विशेषता है ब्रज के प्रेम की। तो श्रीमंती सुनती जाती थी और स्नेह से पयोधर स्मित हो रहे थे और आंखों से अश्रु बह रहे थे। अगला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में तान, ये लिखा है मैथिली समुगुप्त ने, यही तो अगला जीवन की कहानी है, उसकी आंखों में आंसू और आंचल में दूध रहते हैं, आंचल में है दूध और आंखों में तानी। तो भगवान बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़ करके चले गए, यशोधरा, यशोधरा नाम की पुस्तक में लिखा है, यहाँ भी आंचल में दूध और आंखों में पानी, माँ रो रही है अपने बच्चे के लिए, सुन रही है चरित, श्लेषेण स्मितानम वर्षण जलधाराए मारा। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि यहाँ स्तन शब्द न कहकर के पयोधर क्यों कहा गया, पयोधर मेघ को कहते हैं, जो पय को जल को धारण करता है वो है पयोधर, स्तन को पयोधर कहते हैं कि वो दूध को धारण करता है, दूध को भी पाय कहते हैं। तो श्लेष से यह अर्थ कर रहे हैं कि स्तनों से इतना दूध चू रहा है कि लगता है कि बादल बरस रहा है, यह सुखदेव गोस्वामी का आशय। यशोदा की मथुरा प्रस्थान दिन आरभ्य व सत्स स्त्री पुंजे ने प्रबुद्ध माना अति पुत्र मुखम बिना अन्य किमिति अहम न द्रक्ष्यामि इति प्रतिक्षण और प्रतिजनाना मुरी मित्र अश्वणी असमंता निज वस्त्रादिकम अपलाभ्य। जिस दिन से श्री कृष्ण मथुरा प्रस्थान किए उसी दिन से माँ हमेशा विलाप करती रहती थी और हजारों हजारों सैकड़ों स्त्रियां उसको समझाती थी, कृष्ण आएगा तुम धीरज रखो ये करो, लेकिन पुत्र का मुख देखे बिना यशोदा को कभी भी चैन नहीं आ रहा। और इतना वो विह्वल रहती थी कि इसीलिए पुत्र के लिए न कोई संदेश बोल पाती थी, कुछ नहीं कह पाई उद्धव जी से, कुछ तो कहना चाहिए था कि तुम हमारे पुत्र से यह कहना वह कहना, न कृष्ण के कुशल कृष्ण का कुशल समाचार पूछ पाई, न कृष्ण को कुछ दे पाती थी, बहुत काल तक ऐसे बैठी रह गई। तो माँ यशोदा यहाँ अभी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, चुप से आप सुन रही है, पुत्र के चरित्र को सुन रही है, हरिश्री जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर वाक्य लिखा है, श्लोक लिखा है माँ यशोदा के विषय में, अच्युत चरित्र चित्रित हृदय, अच्युत चरित्र चित्रित हृदय। किसी दीवार पर जैसे चित्र बना दिया जाए और चित्र मिटे न और चले न, इस तरह से कृष्ण का चरित्र माँ के हृदय में बिल्कुल चित्रित जैसा था, अचल। अच्युत चरित्र चित्रित हृदय प्रागेव सा तदैव आसीत, वो तो पहले से ही अच्युत चरित्र चित्रित हृदय थी, और जब उद्बोधक सामग्री आ जाएगी उसको प्रकट करने की, उद्भव का अर्थ आग भी होता है और उत्सव भी होता है, एक तो पहले से ही कृष्ण के चरित्र उसके हृदय में अचल रूप से विद्यमान और उस पर भी अब वो उद्बोधक उसको प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति आ गया है, तो कितना कृष्ण का चरित्र माँ के हृदय में घूम रहा होगा, वो सोना माखन मांगना नहाना या झूठ बोलना माखन चुरा करके मैया नहीं नहीं माखन खाए, कितना घूम रहा होगा, खाना पीना घूमना नटखटपना करना और सब ऐसा समझाया था। जब उद्धव जी ने देखा होगा माँ को, या उद्धव को जब माँ ने देखा, इसको उद्धवेक्षा कहते, पहले से ही अच्युत का चरित्र हृदय में बहुत अंकित था, तब तक प्रकाश देने वाला आ गया सामने उद्बोधन करने वाला, तो क्यों नहीं बहुत बहुत श्री कृष्ण की लीलाएं हृदय में उग आएंगी, तो उस आवेश में माँ कुछ कह नहीं पाई। उद्धव जी ये सब देख करके विस्मित हो गए, तो सोचने लगे कि अब हम किस तरह से इनको सांत्वना दें। अपनी पूर्ण बुद्धि से उद्धव जी ने बहुत कोशिश किया, और आप उसको सुनेंगे कितना विचित्र ढंग से प्रवचन कर रहे हैं। पहले प्रशंसा किए और कह दिए कि इस संसार में सबसे बड़े प्रशंसनीय, सबसे बड़े भाग्यवान आप दोनों हैं, कृष्ण ने आपकी ऐसी मति। जब उद्धव जी ने भाग्यवान कहा नंद बाबा को, तो नंद बाबा कहीं कहा से पागल आ गया, सबसे अधिक दुखी सबसे अधिक विपत्ति में हम हैं और आकर कह रहे हैं भगवान। मैं एक बार कथा सुना था गौर गोविंद महाराज जी के नेक्स्ट बारम्बार इस पॉइंट को कह रहे, अंग्रेजी में बोल रहे थे, कहते थे ये उद्धव मथुरा से आया है और कह रहा है हमको भाग्यशाली, कहाँ का क्रेजी मैन, ये कहाँ का पागल आ गया, हम भाग्यशाली हैं, हम पुत्र के विरह में मर रहे हैं और कह रहे हैं भाग्यशाली है, ये कहाँ से आ गया। इस तरह जो बार बार बोल रहे हैं ये कहाँ से आ गया, कहाँ का पागल आ गया, कह रहा है हम भाग्यशाली और सबसे अधिक भाग्यशाली है, तो कुछ समझ ही नहीं रहा। भाग्यशाली बता रहे, भाग्यशाली तो ये है ये मथुरा वाले भाग्यशाली, हम तो सबसे अभागा व्यक्ति। तो उद्धव जी नंद बाबा और माँ यशोदा की प्रशंसा करते हुए उन्हें तत्व ज्ञान बताएंगे। हरे कृष्ण।
नंद बाबा उद्धव जी से कहते हैं, हम ते कछु सेवा न भई, हम ते कछु सेवा न भई, हम ते कछु सेवा न भई, धोखे ही धोखे जू रहे हम, धोखे ही धोखे जू रहे हम, जाने नाही त्रिलोक नहीं, हम ते कछु सेवा न भई, हम ते कछु सेवा न भई, चरण पकड़ी कर विनती करिबो। उद्धव
मेरी ओर से मेरे प्रिय पुत्र कृष्ण का चरण कमल पकड़कर विनय करना, वे हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दे।
चरण पकड़ी कर विनती करिबो, सब अपराध क्षमाब की जकीबे। चरण पकड़ी कर विनती करिबो, सब अपराध क्षमा कीबे। ऐसो भाग हो गोकबू, ऐसो भाग हो गोकबू, श्याम गोद पुनि मैलीबे, श्याम गोद पुनि मैलीबे। हम ते कछ सेवा न भई, हम ते कछ सेवा न भई। कहे नंद आगे उधो के एक बेर दर्शन दीबे। सूरदास स्वामी मिली अब के सब दोष निज गत की वे। हम ते कछ सेवा न भई।
फिर नंद बाबा पूछते हैं उद्धव जी से,
कब हूँ सुधे करता गोपाल हमारी, कब हूँ सुधे करता गोपाल हमारी। पूछत पिता नंद उधसुदा महतारी, कब हूँ सुधे करता गोपाल हमारी, कब हूँ सुधे करता गोपाल हमारी। बहुत चूक परी अनजानत, बहुत चूक परी अनजानत, कहा अब के पछताने। वसुदेव घर भीतर आए, वसुदेव घर भीतर आए, मैं अहिर कर जाने। कब हूँ सुधे करता गोपाल हमारी। पहले गर्ग कहो तो हम सो संग दुख गय भूल। सूरदास स्वामी के बिछुरे, सूरदास स्वामी के बिछुरे, रात दिवस भय सूल। कब हूँ सुधे करता गोपाल हमारी, कब हूँ सुधे करता गोपाल हमारी, कब हूँ सुधे करता गोपाल हमारी, कब हूँ सुधे करता गोपाल हमारी। पूछत पिता नंद उधोसो यर जसुदा महतारी,
कबहु सुधी करत गोपाल हमारी, कबहु सुधी करत गोपाल हमारी, कबहु सुधी करत गोपाल हमारी।
श्री गोपीजन कहते हैं कि हमारे नेत्र कठिन वाणी पकड़ लिए हैं, इनको कठिन आदत पड़ गई, दुख सहने की आदत पड़ गई, बिना कृष्ण को देखे एक क्षण भी नहीं रह पाती हैं।
मनन कठिन बान पकड़ी, नन कठिन बान पकड़ी, गिरिधर लाल रसिक बिन देखे, गिरिधर लाल रसिक बिन देखे, रहत न एक घड़ी मननी, कठिन बान पकड़ी, नैनन कठिन बान पकड़ी, गिरिधर लाल रसिक बिन देखे, गिरिधर लाल रसिक बिन देखे, रहत न एक घड़ी नैनन कठिन बान पकड़ी, नैनन कठिन बान पकड़ी, नैनन कठिन बान पकड़ी, आवत ही जमुना जल लीने सखी सहज डगरी, वाउलत मग हो मोहि देखी हाँ, वाउलत मग मोहि देखी हाँ, उलटी लगगरी नन कठिन बान पकड़ी, आवत ही जमुना जल लीने सखी सहज डगरी। अरे सखी, मैं जमुना जी से पानी भरकर आ रही थी और बिल्कुल सीधे पथ पर चल रही थी, परंतु नेत्र कृष्ण की ओर देखना चाहते थे, उल्टे देख रहे थे, इसलिए मैं गगरी लेकर के गिर पड़ी। वह उलटे मग मही देखी हाँ, उलटी ले गगरी मनन कठिन बान पकड़ी, नैनन कठिन बान पकड़ी, वह मूर्ति तब ते इन बल करी लौर मांझ धरी, वह मूर्ति तब ते इन बल करी लौर मांझ धरी, ते क्या तृप्त हो तब रंचक जिन पाई शिगरी। जिन नेत्रों ने कृष्ण के समग्र श्री विग्रह के सौंदर्य का आस्वादन किया है, वे अब रंचक सौंदर्य पाकर अभी केवल मन से ध्यान करके कैसे तृप्त हो सकते। वह मूर्ति तब ते इन बल कर लय उर मांझ धरी, ते क्या तृप्त
तह तय रंचक जिन पाई सिगरी जग उपहास लोक लज्जा तजी रहे रहे एक जकरी जग उपहास लोक लज्जा तजी रहे एक जकरी सूर पुलक अंग अंग प्रेम भरी संगति श्याम करी नैननी कठिन बानी पकड़ी नैनन कठिन बानी पकड़ी जग उपहास लोक लज्जात जी रहे एक जकरी सूर पुलक अंग अंग प्रेम भरी संगति श्याम करी नैनन बानी नैनन कठिन बानी पकड़ी गिरिधर लाल रसिक बिन देखे रहतन एक घरी नैनन कठिन बानी पकड़ी नैनन कठिन बानी पकड़ी
मैना घूंघट मैन समात मैना घूंघट मैन समात मैना घूंघट मैन समात मैना घूंघट मैन समात सुंदर बदन नंद नंदन को सुंदर बदन नंद नंदन को निरखी निरखी नायघात निरखी निरखी नायघात मैना घूंघट में समात मैना घूंघट में समात मैना घूंघट में समात सुंदर बदन नंद नंदन को सुंदर बदन नंद नंदन को निरखी निरखी नायघात निरखी निरखी नायघात मैना घूंघट में न समात अतिरस लुब्ध महामधुलंपट अतिरस लुब्ध महामधुलंपट जानत एकन बात जानत एकन बात कहा कहा दर्शन सुख माते कहा कहा दर्शन सुख माते
ओट भये अकुलात, ओट भये अकुलात, नैना घूंघट में न समात, नैना घूंघट में न समात, घूंघट में नैना घूंघट में न समात, बार बार बरजत हाँ हारी, बार बार बरजत हारी, तऊटेव नहीं जात, बार बार बरजत हारी, तऊटेव नहीं जात, सूरतनक गिरधर दिन देखे, पलक कलप सम जात, सूरतनक गिरधर बिन देखे, सूरतनक गिरधर बिन देखे, सूरतनक गिरधर बिन देखे, पलक कलप समझात, नैना घूंघट में न समात, नैना घूंघट में न समात, नैना घूंघट में न समात, बार बार बरजत हारी, तऊटेव नहीं जात, सूरतनक गिरधर बिन देखे, पलक कलप समझात, नैना पलक कलप समझात, नैना घूंघट में न समात, नैना घूंघट में न समात, नैना घूंघट में न समात, नैना घूंघट में न समात। मेरे नैनायत की पड़े, मेरे नैनायत की पड़े, नैनायत की परे, मेरे नैनायत की परे, सुंदर श्याम अंग की शोभा, सुंदर श्याम अंग की शोभा, निरखत भट की परे, निरखत भट की परे, मेरे नैनायत की परे, मेरे नैनायत की परे, मोर मुकुट लट घुंघर वारी, मोर मुकुट मोरम कुटिलत घुंघरवारी तामे लटकी परे मोरम कुट मोरम कुट मोरम कुट लट घुंघरवारी तामे लटकी परे कुंडल तरनी किरणी ते उज्ज्वल कुंडल तरनी किरणी ते उज्ज्वल चमकन चटकी तरे मेरे नैना अटकी तरे नैनायत की तरे मेरे नैनायत की तरे चपल नैन मृग मीन कंज जित चपल नैन चपल नैन मृग मीन कंज जित अलिजाँ लुब्ध परे सूर श्याम मृदु हसन लुभाने सूर श्याम मृदु हसन लुभाने हम ते दूरी परे हम ते दूरी परे मेरे नैनायत की परे मेरे नैनायत की परे नैनायत की परे मेरे नैनायत की परे सुंदर श्याम अंग की शोभा निरखत भटकी परे मेरे नैनायत की परे मोर मुकुट लट घुंघरवारी मोर मुकुट लट घुंघरवारी तामे लटकी परे तामे लटकी परे कुंडल तरनी किरणी ते उज्ज्वल चमकन चटकी परे मेरे नैनायत की परे नैनायत की परे चपल नैन मृग मीन कंज जित अलिजाँ लुब्ध परे चपल नैन मृग मीन कंज जित अलिजाँ लुब्ध परे सूर श्याम मृदु हसन लुभाने सूर श्याम मृदु हसन लुभाने हसन लुभाने सूर श्याम मृदु हसन लुभाने हम ते दूरी परे नैना मेरे नैनायत की परे मेरे नैना मेरे नैना नैना मेरे नैनायत की परे सुंदर श्याम अंग की शोभा निरखत भट की परे आ चपल नयन मृग मीन कंजुजित अलि ज्यों।